भोमित्रगणाः, पुनरपि स्वागतमस्तु रेडियो मधुबनस्य पठामि संस्कृतम् इति कार्यक्रमे। अद्य वयं नवरात्रिप्रीत्यर्थं त्रीणि श्लोकानि पठिष्यामः। अर्थात् हे मित्रगण, रेडियो मधुबन के पठामि संस्कृतम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और नवरात्रि के प्रीत्यर्थ, नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज हम पहले तीन श्लोक पढ़ेंगे। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। यहाँ पर नवरात्रि के नौ दिनों में माँ दुर्गा जिन रूपों को धारण करती है उनके नाम बताए गए हैं कि सबसे पहले दिन वह शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। तो शैल का अर्थ हुआ पत्थर, और चूंकि माँ दुर्गा या भगवती पार्वती हिमालय की पुत्री कही जाती हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री या शैलजा भी पड़ा है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन वह शैलपुत्री के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होती हैं, हमें उस रूप में वह प्रसन्न होती हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और दूसरे दिन के लिए उनका रूप जो है वह ब्रह्मचारिणी रूप उनका हो जाता है। तृतीयम चंद्रघंटेति, और तीसरे दिन उनका नाम चंद्रघंटा, यहाँ पर संधि है चंद्रघंटा अधिक इति, तो संधि हो गया चंद्रघंटेति। और इसी प्रकार के संधि इन तीनों श्लोकों में कई बार हमें देखने को मिलेंगे। तो तीसरे दिन के रूप का वर्णन चंद्रघंटा के रूप में किया गया है। और कूष्मांडेति चतुर्थकम, और चौथे दिन के लिए उनके रूप का नाम कूष्मांडा इस प्रकार है। पंचमम स्कंदमातेति, और पांचवें दिन का नाम स्कंदमाता है। जबकि षष्ठमम कात्यायनीति च, छठवें दिन का नाम कात्यायनी है। सप्तमम कालरात्रीति, और सातवें दिन का नाम कालरात्रि इस प्रकार है। जबकि महागौरीति चाष्टमम, आठवें दिन का नाम महागौरी इस प्रकार है। चाष्टमम, यह च अधिक अष्टमम, तो संधि हो गया और च का अर्थ हुआ और तथा। नवमम सिद्धिदात्री च, और नौवें दिन का नाम उनका सिद्धिदात्री है, क्योंकि नौवें दिन तक व्रत करने से वह हमें सभी प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध कराती हैं। तो इस प्रकार नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः, इस प्रकार दुर्गा के नौ रूपों की चर्चा होती है, नव दुर्गा के नौ रूपों की कीर्ति इस प्रकार फैली हुई है। उक्तान्येति नामानि, यहाँ फिर संधि हो गया, उक्तानि एतानि नामानि, अर्थात इस प्रकार उनके नाम गिनाए गए हैं। किसके द्वारा? तो ब्रह्मणैव महात्मना, जो महात्मा हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मज्ञ हैं, उनके द्वारा इस प्रकार माँ दुर्गा के नौ नामों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों, इस सुंदर से श्लोक के बाद हम कुछ दो तीन और अच्छे अच्छे श्लोक आज पढ़ेंगे। एक बहुत प्रिय श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाद्धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय देती है, विनय संपन्न करती है। ददाति, जब मनुष्य विद्या ग्रहण करता है तो उसमें स्वयमेव विनय आ जाता है। और विनयात याति पात्रताम, और जब उसमें विनय आ जाता है तब वह गुरु से विद्या को और अच्छी तरह ग्रहण करता है और उसमें पात्रता आ जाती है। और फिर पात्रत्वा धनम आपनोति, और पात्रता आने के बाद उस पात्रता के कारण, उस कुशलता के कारण धन भी आता है। धनम आपनोति, धन भी आता है। और धनात धर्मम, धन के कारण धर्म भी आता है। और ततः सुखम, और ततः अर्थात उसके कारण या धर्म के कारण सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख, इस प्रकार की व्याख्या की गई है। तो यहाँ हमने देखा कि पंचमी विभक्ति का बहुलता से प्रयोग हुआ है। विनयात याति पात्रताम, विनयात ये पंचमी हो गई, पात्रत्वा ये पंचमी हो गई, धनम आपनोति तो धनम द्वितीय हो गई, और धनात धर्मम तो धनात फिर से पंचमी हो गई, और ततः सुखम यहाँ ततः फिर से पंचमी हो गई। तो इस प्रकार थोड़ा सा व्याकरण भी हमने देख लिया। तो ये भी याद दिला दूं कि जो हमने नव दुर्गा के नौ नाम गिने थे, वहाँ हर जगह प्रथमा विभक्ति लगी थी, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये सारी प्रथमा विभक्तियाँ लगी हुई हैं। एक और सुंदर सा श्लोक पढ़ते हैं। अनेक शास्त्रं बहुवेदितव्यं अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरमिवाम्भुमध्यात्। तो बहुत सुंदर श्लोक है कि अनेक शास्त्रम, अनेक प्रकार के शास्त्र संसार में विद्यमान हैं, बहुवेदितव्यं जो जानने योग्य हैं और जो बहुत अच्छी प्रकार से जानने योग्य हैं, लेकिन अल्पश्च कालो, हमारे पास काल अर्थात समय कम है, अल्प है, और बहवश्च विघ्नाः, और विघ्न या संकट बहुत सारे हैं। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? यत् सारभूतम् तत् उपासितव्यम्, जो सारभूत है या सार तत्व को बताने वाला है, उसी बात को, तत् उसी को उपासितव्यम्, उसी की उपासना करे, उसी को पढ़ाई करे, उसी को समझने का प्रयास करे, उसी को सीखने का और आचरण में लाने का प्रयास करे। और आगे एक उदाहरण बताया है कि हंसो यथा, जिस प्रकार हंस करता है, किस प्रकार, तो क्षीरमिवाम्भु मध्यात्, क्षीर अर्थात दूध और अम्भु अर्थात पानी जब मिले हुए होते हैं तो हंस क्या करता है कि उसमें से वह केवल क्षीर को चुन करके ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। इसीलिए हंस को नीर क्षीर विवेकी भी कहा गया है। तो जिस प्रकार हंस करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी करना चाहिए कि सभी शास्त्रों की पढ़ाई करने में हमारा समय पूरा नहीं पड़ेगा, इस बात को याद रख करके जो सारभूत या जो सारात्मक जो शास्त्र है उसी को पढ़े। और मित्रों, ये एक समझने वाली बात है या सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि होगी उसे उसी प्रकार का शास्त्र सारभूत लगेगा। जिसमें मेरी अधिक रुचि होगी मैं वही शास्त्र पढ़ना चाहूँगी। पर यह श्लोक कहता है कि उसी को बहुत ध्यान से, उसी को बहुत सारभूत करके, उसी को बहुत दृढ़ता से ग्रहण करके, उसी को बहुत घनता से ग्रहण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम हंस के समान नीर क्षीर विवेकी हो सकेंगे। एक और श्लोक देखते हैं। दानेन तुल्यो विधिरास्ति नान्यो लोभोचनान्योस्ति रिपुः पृथिव्याम विभूषणम शील समम च नान्यत् संतोष तुल्यम धनमस्ति नान्यत्। यहाँ तुमने गौर किया होगा कि पिछले श्लोक का छंद और इस श्लोक का छंद दोनों एक ही हैं, और इस श्लोक का अर्थ भी बहुत सरल है। दानेन तुल्यो विधिरास्ति नान्यो, नान्यो अर्थात न अन्यो या न अन्यः, जिसमें अन्यः के विसर्ग का श्लोक में ओकार हो जाता है। तो न अन्यः अर्थात कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो दाने न तुल्यो, दान के तुलना में जो उतरे, खरा उतरे, या दान के जितना मूल्यवान हो, दान को तौलने लायक जिसमें सामर्थ्य हो, ऐसा दूसरा कोई गुण या ऐसी कोई विधि नहीं है। तो विधि अर्थात जो भी हम सत्कर्म करते हैं, तो उन सभी सत्कर्मों में दान की तुलना किसी अन्य से नहीं हो सकती। दान सर्वोपरि विधि है। और आगे कहते हैं, लोभो च नान्योस्ति रिपुः पृथिव्याम। इस पूरी पृथ्वी पर, पृथिव्याम, लोभ के समान न अन्यः अस्ति, नान्योस्ति, दूसरा कोई शत्रु, रिपुः अर्थात शत्रु। तो लोभ के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। और विभूषणम शील समम च नान्यत्, शील के समान कोई आभूषण नहीं है। तथा संतोष तुल्यम धनमस्ति नान्यत्, संतोष के समान दूसरा कोई धन नहीं है। तो मित्रों, आज हम यहाँ समाप्त करते हैं, और तुम्हें आने वाली दिवाली की शुभेच्छा देते हुए मैं आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करती हूँ। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।